Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, एक उड़ते हुए गुब्बारे के ऊपर क्या खूब लिखा था, वो जो बाहर है वह नहीं, वो जो भीतर है वह आपको ऊपर लेकर जाता है। दोस्तों, जिंदगी में कोई भी तरह के मकसद को हासिल करने में कहीं ना कहीं हमारी इनर क्वालिटीज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से हम बुजुर्गों की जिंदगी में एक नई रोशनी ला सके। आइए इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधीश शर्मा जी, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू वेरी मच, प्लेजर।
डॉक्टर साहब, हमने आज ऐसे कगार पर आ गए हैं जहाँ पर हमने बुजुर्गों की ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर बनाना है वो हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, बुजुर्गों की ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज की दुनिया में मिसिंग है, जिससे शायद उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतरीन हो सकती है?
इससे पहले शायद ये जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाएगा कि बुज़ुर्ग हैं कौन।
बिल्कुल।
देखिए, हम जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन से बुज़ुर्ग होना शुरू हो जाते हैं।
अच्छा।
क्योंकि हम उसके बाद धीरे 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 हर रूप से बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं और मेंटली एक्सपीरियंसेस पाते जाते हैं और हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती जाती है, तो ज़िंदगी को देखने का एक नज़रिया जो है वो महसूस करना शुरू कर देते हैं। देयर इज एन ओल्ड सेइंग व्हिच सेज, व्हेन यू इट इज नॉट दैट यू ग्रो ओल्ड, व्हेन यू स्टॉप ग्रोइंग यू बिकम ओल्ड।
सो ट्रू।
तो जब ग्रोथ रुक जाती है तो वहां पे इंसान बुजुर्ग महसूस करना शुरू कर देता है।
जी।
वैसे आर्बिट्रेली अगर देखें आंकड़ों के लिए तो 60 साल की उम्र को कहा जाता है कि बुजुर्ग हो गए, बट 60 को फिर 65 किया गया क्योंकि लोग ज्यादा देर तक जीने लगे। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया, यंग ओल्ड एंड ओल्ड ओल्ड।
ओके।
यंग ओल्ड मतलब 60 के ऊपर, और ओल्ड ओल्ड का मतलब है 80 के भी ऊपर।
ओके।
और फिर सेंचुरियन, यानी जो 100 साल तक पहुंच रहा है। हर इस उम्र में
जी
कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। अगर एक तरह से देखें तो बुजुर्गों के पास एक्सपीरियंस भी होता है, इतने सालों में उन्होंने जो कॉन्टेक्ट बनाए हैं वो भी होते हैं, और वैसे भी अगर कोई अपने ज़िंदगी में जो जो किया है उसने, उसकी पीक पे होता। पहला चैलेंज ये आता है कि अगर जो ये सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट है, जो कि बुज़ुर्गों की ज़िंदगी में उनको फेस करना पड़ता है कि आप इस उम्र के हो गए तो इसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते, एटलीस्ट काम को लेके अगर देखें, तो वो काम का ना होना एक बहुत बड़ी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी देता।
करेक्ट।
सिर्फ मनी वाइज नहीं, क्योंकि कई लोग हैं जिनकी पेंशन्स जो हैं या दूसरे पैकेजेस हैं जब वो काम कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा है।
ट्रू।
लेकिन इनसिक्योरिटी ये होती है कि आज तक मैं कहीं जाता था, उस जाने के लिए मन में एक प्लानिंग होती है, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ समय का भाव होता है, कुछ लोगों से आप मिलते हैं, जो करते हैं उसे करके आपको खुशी होती है। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी जब आप टेक्निकली रिटायर हो गए। साथ ही साथ दूसरे लोग भी समझते हैं कि कहीं कर ना कहीं ये जो बात थी कि बुज़ुर्ग का मतलब है वानप्रस्थ या संन्यास, मतलब आप हर चीज़ से हट जाएं, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि कल तक आपको आदत है हर चीज़ में ऑलमोस्ट एट द टॉप होने की, और आज आपको कहा जाए कि आपकी ना कोई डेजिग्नेशन है और अब आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, और आप वैसे भी उस उम्र के हैं कि आपको इन सब चीज़ों से हटना चाहिए।
बिल्कुल।
बुज़ुर्गों के लिए ये एक चैलेंज के साथ साथ ये भी उनको कहीं ना कहीं दर्शाता है कि शायद समाज को मेरी ज़रूरत नहीं है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी बिग फैक्टर्स जो कि इन ग्लोरियस सनसेट ईयर्स जिनको कहते हैं, उसके अंदर लोगों को फेस करना पड़ता। बहुत सारों जो लोग हैं इस उम्र के, उनके बच्चे जो हैं वो जा चुके होते हैं। बहुत कम फैमिलीज़ हैं अब जहाँ पे कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक ही परिवार में रहते हैं, तो उनकी जो सपोर्ट है
जी,
मेंटल भी फिज़िकल भी, वो नहीं रहती। इसी दौरान में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। ऐसा पाया जाता है कि इस उम्र में
जी,
जो बीमारियाँ कुछ समय पहले शुरू हुई, मिड ईयर्स में शुरू हुई, और क्रॉनिक बीमारियाँ हैं, कुछ हमारे शरीर से रिलेटेड है, कुछ मन से रिलेटेड है, वो सारी समय के साथ साथ अगर प्रॉपरली मैनेज ना हो तो वो बढ़ती रहती है। और उसकी वजह से उनके सिम्टम्स रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जब किसी को फेस करने होते हैं तो वो काफ़ी कष्टप्रद हो सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अकेला रह रहा है और परिवार का कोई सदस्य नहीं है, जो कि खासतौर पर बड़े शहरों में हम देखते हैं, और वो लोग जो कि विदेशों में रहते हैं उनमें भी हम इस परिवार जो एकाकी होता जा रहा है उसको देखते हैं, तो वहाँ पर उनको ये भी एक इनसिक्योरिटी होती है कि कभी अगर मुझे कुछ हुआ, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई, तो मेरे साथ कौन है। या रोज़मर्रा में आप किसी से बात ही नहीं कर रहे, वैसे भी रिटायर हो चुके हैं, और अगर आसपास के लोग फ्रेंडली नहीं हैं और आपने इस चीज़ के ऊपर पूरी ज़िंदगी ध्यान नहीं दिया, काम में ही मसरूफ़ रहे, जो कि बहुत लोग होते हैं जिनके सोशल सपोर्ट सिस्टम्स कम हो जाते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए ये एक चैलेंज हो जाता है। प्लस मैनी ऑफ द पीपल ऑल्सो रियलाइज कि जब तक उनके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई सेट गोल्स नहीं है,
करेक्ट,
कोई डेली रूटीन नहीं है
जी,
तो दिन बहुत लंबा होता है।
दिस इज़ सो ट्रू डॉक्टर साहब, आप एकदम सही कह रहे हैं। मैंने जितना नोटिस किया है, कई बार ऐसा होता है कि ये एज में आकर के लोगों का जो वो मोटिवेशन होता है ज़िंदगी को जीने का, क्योंकि मोटिवेशन तभी आता है जब आपके पास ज़िंदगी में गोल हो, कोई भी तरीके का गोल हो, चाहे वो मुझे किसी पायदान पर पहुंचना है या फिर अपने फैमिली को सेटल करना है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन वो इतने मायने रखती है कि आप एक इंथुजियाज़म के साथ में दिन की शुरुआत करते हैं, वो कहीं ना कहीं खोसा जाता है बुज़ुर्गों के अंदर में।
देखिए एक्चुअली गोल्स जो है ना, हम अनफॉर्चुनेटली आउटर सिर्फ सेट करते हैं।
करेक्ट,
आउटर गोल्स मतलब मुझे हर महीने में इतना काम करना है, इस पोजीशन पर पहुंचना है, इतनी मेरी ज़रूरतें हैं उसके लिए पैसा कमाना है
जी,
उन लोगों से मिलना है जो कि मेरे काम आ सके। तो धीरे 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 इस उम्र तक पहुंचते हुए आपके जो अपने लिए पर्सनल गोल्स हैं, और जो पहला गोल होना चाहिए हर किसी और चीज़ का भी, एक्सटर्नल का भी, कि मुझे ज़िंदगी को एंजॉय करना, तो वो जो गोल है वो आप कभी भी सेट कर सकते हैं, और वो गोल लॉन्ग टर्म होने की भी ज़रूरत नहीं है। यू नो देयर इज एन ओल्ड सेइंग व्हिच सेज हैप्पीनेस इज़ अ डेली डिसीजन। आज मैं खुश होना चाहता हूँ या नहीं, ये मैं आज डिसाइड कर सकता हूँ, और उसके बाद जो बाहरी कंस्ट्रेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके हिसाब से मैं कितना खुश रहूँगा ये भी मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ। अगर कोई चीज़ टाइम पे नहीं हो रही है तो उस वेट का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। अगर चीज़ें हो गई तो फिर आपके लिए तो कुछ और करने को नहीं होगा सिर्फ उसे फॉलो करने के लिए। सो दैट इज़ वाई इवन इन सो कॉल्ड एल्डरली, और ये जो है ये कहीं ना कहीं हमने मेंटल एक प्रोग्रामिंग की हुई है कि बचपन में पढ़ाई करेंगे, फिर काम करेंगे, फिर बच्चे होंगे, उसके बाद का मालूम नहीं। सो अनलेस वी स्टार्ट चेंजिंग दिस प्रोग्रामिंग कि मैं जिस उम्र में हूँ, जिस पड़ाव पर हूँ, मैं रोज़ अपने लिए कुछ डिसीजन सेट करूँ
जी,
गोल्स रखूँ, और उनका पहला गोल हो हैप्पीनेस, शांति एंड गिविंग टू अदर्स, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। हम किसी भी स्थिति में हों, अगर हम चाहें तो हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। एक्चुअली बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो असहाय होने की एक फीलिंग है, या एक फीलिंग कि मैं अब किसी काम का नहीं हूँ, जब वो दूसरों के लिए थोड़ा सा भी करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि they are still very useful to the society,
true,
to the people around, to the family.
And specifically, वो क्यों इतना बेहतर तरीके से इसे कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी देखी है, उन्होंने कई सारे एक्सपीरियंसेस से बाहर निकले हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति को ज़रूरत है, अगर वो उनकी मदद करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ उनका जो एक्सपीरियंस है उसका सही यूटिलाइजेशन भी होगा, जो मुझे लगता है।
देखिए, हम जब कोई भी कंपनी होती है
जी,
तो उसमें बोर्ड मेंबर्स होते हैं।
करेक्ट।
वो बोर्ड मेंबर्स काम नहीं करते, वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस और विजन को यूज करते हैं।
करेक्ट।
और एल्डरली के पास वो खजाना है,
बिल्कुल है,
तो उसको बांटने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, अनलेस वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करे। और वो जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है कि इससे उनका मतलब है कि मेरे पास कुछ नहीं होगा, या मेरे लोग कोई आसपास नहीं होंगे, या मेरे पास कोई फोकस नहीं होगा, और अब तो बस रिटायर होके वेट करेंगे कि जिंदगी एंड कब होगी। और वो एक प्रोग्रामिंग है जो चलती रहती है उस लास्ट पॉइंट तक, और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो फिर आप उस प्रोग्राम को जीना शुरू कर देते हैं। बट इफ़ यू टेंड टू चेंज द प्रोग्राम, यू चैलेंज द प्रोग्राम एंड अदर्स अराउंड यू, खासतौर पे जो स्पाउस है, हालांकि इस उम्र में एक और बहुत बड़ी बात ज़रूर होती है कि जो आपका पार्टनर है उनमें से दोनों में से एक को कभी ना कभी तो जाना है।
बिल्कुल।
तो जब एक जाता है तो दूसरे के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी उसी के आसपास उस धुरी पर ही चल रही होती है। तो वहाँ पे मेंटली प्रिपेयर रहना कि आपके आसपास के लोग जो रिश्तेदार हैं या फैमिली मेंबर्स हैं वो धीरे धीरे इस दुनिया को छोड़ेंगे, और उसके बावजूद कैसे अपने आप को पक्का रख के अपने लिए, और फिर एक व्यक्ति अगर गया तो आप 100 को अडॉप्ट कर सकते हैं मेंटली। तो वो एक कमी को पूरा करने के लिए भी थोड़ी सी एक एटलीस्ट मेंटल प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। एंड लास्टली, अब के बदलते हुए समय में इकोनॉमिकली कई बार लोग प्लान नहीं करते।
करेक्ट।
एंड स्पेशली इलनेसेस के लिए प्लान नहीं करते। तो वो जब एकदम क्राइसिस आता है तो उस क्राइसिस में आमतौर पर लोग टूट जाते हैं। तो वो प्लानिंग जो है वो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। एक्चुअली इन सब चीज़ों की प्लानिंग जो है वो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। इन्वेस्टिंग इन पीपल, रिलेशनशिप्स के अंदर इन्वेस्ट करना, मेरे को काम के सिवा और क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ इसके बारे में सोचना, वो कौन लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हो सकते हैं, वैसे रिश्ते बनाने की कोशिश करना, फिजिकली और मेंटली फिट रहना ताकि आप ज़्यादा देर तक बिना किसी बहुत ही डिसेबलिंग प्रॉब्लम के चल सकें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि समय के साथ साथ, डिपेंडिंग आप कितनी अच्छी हेल्थ रखते हैं, होंगी ही। आँखों से थोड़ा धुंधला दिखना शुरू होगा, लेकिन आँखों से धुंधला दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइंड से धुंधला नहीं दिखना चाहिए।
बिल्कुल।
और आँखों को आजकल ठीक करने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। दांत थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन और तरीके हैं कि आप खाना दूसरे रूप से खा सकें। शायद समय के साथ साथ आपकी सुनने की शक्ति जो है वो कम हो जाए, तो उसके लिए आपके कुछ हॉबीज, ताकि आप उस शक्ति के कम होने के बाद भी अपनी ज़िंदगी को इंटरेस्टिंग बना सकें। हम इन चीज़ों के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि किसी समय पे ये नहीं होंगे।
सही बात।
और जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, कई बार बुजुर्ग उस चीज़ में या तो ध्यान नहीं देते या उन्हें डर लगता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का एक डर जो है वो आमतौर पे इस उम्र में पाया जाता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ पैदा नहीं हुआ, तो उन्होंने बचपन से वो टेक्नोलॉजी, चाहे इंटरनेट है, टीवी तो ऐसा है कि सिर्फ रिमोट से ही चलता है, तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बट बाकी जो चीज़ें आपको एक बहुत नया आयाम दे सकती हैं, चाहे वो सेल फोन्स हैं अगर प्रॉपरली यूज हो तो, इंटरनेट है, तो उसके लिए देखना शुरू कर देना, या आपके आसपास के वो जो लोग हैं जहाँ पे कि आपकी स्किल्स काम कर सकती हैं, उन चीज़ों के बारे में प्लान करना शुरू कर देना। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि होंगी समय के साथ, कुछ चीज़ें हैं कि ना हो उसके लिए मैं प्लान कर सकता हूँ। सो दैट हम में से हर किसी को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा।
डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि इस एज में आकर के हम जिंदगी को एक नया मायना भी दे सकते हैं। अगर जिस तरह से आपने कहा कि दूसरों को हेल्प करने से कहीं ना कहीं उनका खुद का भी एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उन्हें साथ ही साथ उनको एक नई ग्रोथ मिलेगी। मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, जिस तरह से आपने कहा कि सीखना अगर हम छोड़ दें, कोई भी चीज़ को सीखना, ज़िंदगी के अंदर हमको कई सारी सीख मिलती है। बुजुर्ग हो या कोई भी व्यक्ति हो, जिस दिन वो सीखना बंद कर देंगे उस दिन वो बढ़ना बंद कर देंगे। ऐसे में बुजुर्ग अगर मैं बात करूं, उनके लिए आपकी क्या राय है? कौन सी ऐसी हॉबीज है जो वो अपनी जिंदगी में ला सकते हैं जिससे उनकी लाइफ थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो सके? ऐसी हॉबीज जिसका कुछ मीनिंग हो, नॉट जस्ट कैजुअल हॉबीज।
देखिए, एक्चुअली इवन सो कॉल्ड कैजुअल हॉबीज आर वेरी मीनिंगफुल।
ओके,
कैजुअल हॉबीज में आ सकता है कि आप ताश खेल रहे हैं,
करेक्ट,
आप कैरम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ या किसी आसपास के बच्चे के साथ। व्हाट वी आर रियलाइजिंग इज कि अगर हम माइंड को किसी भी रूप से स्टिमुलेट करते हैं तो माइंड की ग्रोथ होती है। क्योंकि माइंड में नए कनेक्शंस पैदा होते हैं और वो कनेक्शंस जो हैं वो हमें बाहरी जीवन से डील करने में सहायक होते हैं।
जी,
अगर हम माइंड को आइडलिंग मोड पर छोड़ देते हैं तो आइडलिंग मोड से वो धीरे धीरे नेगेटिव मोड में जाना शुरू हो जाता है। उसको लगातार एक पुश देने की जरूरत रहती है। इसीलिए आपने कई बार शायद नोटिस किया होगा कि बुजुर्ग पुरानी बातें बहुत ज्यादा करते हैं।
True.
कई बार लोग बोर हो जाते हैं कि ये स्टोरी तो आप 20 बार सुना चुके हो। लेकिन एक्चुअली क्योंकि वो पुरानी चीज है और उसको उन्होंने अपने मन में कई बार रिपीट किया है तो वो बहुत ताजी रहती है।
साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि वो जो पल उनके जिंदगी के थे उसमें उन्होंने खुलकर जिया, जिंदगी के बारे में दोबारा सोचने की उन्होंने कोशिश नहीं की, बस वो जीते गए। तो ऐसे में ऐसे जो अच्छे मेमोरीज होते हैं आप उन्हें कभी भूलते नहीं हैं, और आप ये सोच करके बच्चों के साथ में या अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते हैं कि मैं फिर से वो दिन जी रहा हूँ जब मैं बोल रहा होता हूँ। इसीलिए जब ये बोलते हैं तो बहुत एक्साइटेड भी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है।
जी हाँ, एक्चुअली बिल्कुल सही कहा आपने कि वो मेमोरीज हम जीने की कोशिश करते हैं कि उन मेमोरीज को सोच के हमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है और हम शेयर करना चाहते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद अगर हम और नई मेमोरीज नहीं बना रहे तो फिर तो हम बचपन में जी रहे हैं ना। ग्रोथ तो किए नहीं, वो मेमोरीज भी साथ रहे और उन मेमोरीज वाली फीलिंग को नए संदर्भ में भी लाने की कोशिश करें।
ओके,
उसके दो फायदे हैं। एक तो ये है कि अब इन कंपैरिजन टू द पास्ट आपको अपनी जिंदगी खराब नहीं लगेगी,
बिल्कुल
बोरिंग नहीं लगेगी। दूसरा ये है कि मेंटली अगर आप हर समय कोई नई चीज करते रहते हैं तो मेंटली आप एक्टिव रहते हैं। क्योंकि ब्रेन की ग्रोथ जो है वो सिर्फ नई चीजें करने से होती है।
बिल्कुल,
पुराने सर्किट्स बन चुके हैं और नए अगर हम क्रिएट करते रहते हैं तो ब्रेन की ग्रोथ जो कि कहा जाता है कि एक खास उम्र में आने के बाद रुक जाती है, एक्चुअली रुकती नहीं है। सिर्फ ये है कि हम उसे ग्रो करने की एफर्ट करना कम कर देते हैं।
ओके,
तो वो किसी स्टेज पे भी चल सकती है। व्हाट वी हैव आल्सो फाउंड इज कि वो लोग जो कि अकेले रहते हैं तो स्टिमुलेशन कम होती है।
ओके,
या परिवार साथ नहीं है तो परिवार से जो इंटरेक्शन है वो कम होता है और वो धीरे धीरे पुरानी मेमोरीज में ही अगर खो जाते हैं तो आगे जाकर कुछ तरह की ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है।
ओके,
तो वो कल्चर्स जहाँ पे कि बुजुर्ग को परिवार का हिस्सा या समाज का एक इम्पॉर्टेंट अंग समझा जाता है तो उनमें इस चीज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो अल्जाइमर्स नाम की प्रॉब्लम है या डिमेंशिया नाम की प्रॉब्लम है, वो कम होती है। एंड व्हाट आल्सो हैज़ टू बी रियलाइज्ड इज़ कि अगर किसी को मान लीजिए कुछ लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम है, चाहे हार्ट डिजीज़ है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज़ है, जो कि आमतौर पर समाजों में अब बहुत हद तक बढ़े हैं, तो उनका भी ब्रेन पे असर होता। तो उस चीज से बचने के लिए फिजिकली एक्टिव, ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन चलती रहे शरीर के हर अंग में, मेंटली एक्टिव ताकि नए नए पैटर्न्स चलते रहें, इमोशनली एक्टिव ताकि आप उदासीनता का महसूस ना करें, एंड विद अ रूटीन ताकि आपको ये ना लगे कि अब जिंदगी का एंड हो गया, आप इसके लिए सिर्फ बैठ के मुझे वेट करना है कि कब जिंदगी खत्म होगी। बिकॉज अच्छी बात ये भी है कि हमें नहीं मालूम जिंदगी कब खत्म होगी, और कई बार हो सकता है कि हम बुढ़ापे तक पहुंचे ही ना, और अगर पहुंच गए हैं तो भी नहीं पता कि 60 होगा, 65 होगा, 70, 80, 90।
करेक्ट।
सो वो जो आंकड़े हैं, हम उन आंकड़ों को अपने ऊपर ना लगाएं, हम लास्ट डे तक एक्टिव रह पाएं, इसके लिए प्लानिंग होने की जरूरत है। एंड व्हाट पीपल हैव फाउंड इज कि इन मेनी ऑफ द स्टडीज कि आपका माइंड जो है वो नए रूप से जिंदगी को देखने के लिए किसी भी एज में एक्टिव हो सकता है।
ओके।
सिर्फ हमें उसको जो सही चीजें मिलने की जरूरत है, और वहां पे न्यूट्रिशन की बात जरूर आ जाती है
जी,
क्योंकि इस उम्र में आमतौर पे जो पाचन क्रियाएं हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं, और अगर आप ये ध्यान नहीं रखते कि ऐसा खाना जो कि विटामिन से युक्त हो, फाइबर हो, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हो, जो मिल गया वो खा रहे हैं, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है एल्डरली के ऊपर,
क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो शायद डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी उसका असर पड़ता है। तो आपके हिसाब से पौष्टिक भोजन इस तरह से होना चाहिए कि वो उनको होलसम डेवलपमेंट के लिए हेल्प करें, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब ये भी मैंने सुना है कि जैसा हम खाना खाते हैं वैसे ही हमारा मन बन जाता है, तो ऐसे में पॉजिटिव तरीके से भोजन बनाकर अगर बुजुर्गों को दिया जाए तो उनके अंदर भी पॉजिटिविटी आ सकती है, जिससे उनकी ज़िंदगी में थोड़ा तो एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगा।
मैं तो ये कहूँगा कि खाना एक ऐसी एक्टिविटी है जो दिन में 2 या 3 बार तो होती ही है। बुजुर्ग खाना बनाना क्यों नहीं सीख लेते? वेट क्यों करते हैं कि दूसरा कोई उन्हें परोसे?
करेक्ट।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और ख़ास तौर पे अगर आप जबान के टेस्ट को भी थोड़ा सा साइड पे रखते हैं तो आप बहुत अच्छे पौष्टिक आहार खुद बना सकते हैं।
करेक्ट।
सब्जियों को बॉईल करना मुश्किल काम नहीं है, उसमें आपका समय भी जाता है, उसमें आप खुद अपने लिए क्यों कुछ कर रहे हैं तो आपको एक स्वतंत्रता से भी महसूस होती है।
बिल्कुल।
एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी महसूस होती है, आप किसी पर आश्रित नहीं रहते। बट बेसिकली जो पौष्टिक आहार के इस समय में, इस उम्र में बात है, वो खाना आसान होना चाहिए, क्योंकि व्हाट हैज बीन फाउंड इज कि जो आमतौर पे मसूड़े या दांत होते हैं वो बहुत हार्ड चीज़ों को नहीं ले पाते, तो शायद उनको उस रूप में खाने को लेना चाहिए जो कि आसानी से खा सके और आसानी से पक सके।
बिल्कुल।
उसको बहुत ओवर अगर कुक्ड हम कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अच्छी तरह से खा के और फिर पचाने के लिए एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली अलग अलग कारणों से, एंड स्पेशली बड़ी सिटीज़ में तो जो खाली स्पेसेस हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो गई, और बुजुर्गों को कई बार बाहर जाने में डर लगता है, स्पेशली अगर वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे की ट्रैफिक बहुत है।
करेक्ट।
या उनके साथ कोई जाने वाला नहीं है तो वो काफ़ी हद तक होम बाउंड हो जाते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है, तो जब वो प्रॉपर खाएंगे नहीं, प्रॉपर पचेगा नहीं, तो उनकी सेहत पर वैसे भी शारीरिक मानसिक असर पड़ेगा। दूसरी बात आपने कही कि किस अवस्था में खाना चाहिए।
करेक्ट।
देखिए वो तो हर एज में सेम है, पर इस उम्र में शायद थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस प्रकार से उसे ग्रहण करें कि आपके मन में ये फीलिंग है कि ये मेरे शरीर में जाकर बहुत अच्छे तरीके से मेरे शरीर को नए रूप में और स्वस्थ रूप में मेंटेन कर रहा है।
करेक्ट।
तो फिर वो आपके लिए भोजन ही प्रसाद बन जाएगा।
Wow, this is so beautiful.
And also, फिर अगर आपके आसपास वाले लोग हों और उस समय में लोग इकट्ठा ही खाएं और सही माहौल में खाएं, तो ये फीलिंग कि हाँ मेरे साथ भी लोग हैं और जीवन का आनंद हम साथ ले रहे हैं, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम खुशी तो स्वतः ही हो जाती है।
सो ब्यूटीफुल डॉक्टर साहब, आज हमने कई सारी बातों पर रोशनी डाली। हमने जानने की कोशिश की कि बुजुर्गों की जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि उनकी जिंदगी निरस है, ये उनके हाथ में है कि वो अपनी जिंदगी में किस तरह के रस को भरना चाहते हैं, और उसकी शुरुआत उनके खुद की एक छोटी सी मुस्कान से हो सकती है। अर्थात अगर वो खुश रहेंगे तो उनके जिंदगी में सदा सब कुछ अच्छा ही होगा। इस बात के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने चर्चा की कि किस तरह से बुजुर्गों की जिंदगी, जो कि हम आज तक मानते आए कि उनकी जिंदगी में अब कोई लक्ष्य नहीं बचता, लेकिन रियलिटी तो ये है दोस्तों कि अगर हमें जिंदगी को जीना है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, अगर जिंदगी को आप एक नए नजरिए से देखें और हर दिन को एक्साइटमेंट से भरा बना दें, चाहे अपने हॉबीज के थ्रू, चाहे अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने के थ्रू, या चाहे आप किसी और की जिंदगी को बदलने के थ्रू। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति।